आयत नंबर 55। वाइस कुल तुम, और जब तुमने कहा, कौन है ये बनी इसराइल? लेकिन किन्होंने कहा था? क्या वो लोग जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मौजूद थे? नहीं, बल्कि उनके फोर फादर्स ने कहा था। लेकिन अल्लाह ताला ने उनको क्यों कहा? इस पे बात जैसे कि पीछे हुई कि जब कोई अपने पिछले लोगों के किसी बुरे अमल पर राजी हो, बल्कि उसको पेश करे कि तुम्हें पता है हमारे खान बड़े लोग ये करते थे वो करते थे, तो गोया कि वो फिर ऐसे ही है कि तुम भी यही करते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ इससे मुराद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर के बनी इसराइली हैं। क्या कहा था? या मूसा, ए मूसा। गौर कीजिएगा, इसी से कौम का अंदाज पता चलता है कि नबी को नाम लेके पुकारते हैं। और जब किसी कौम के अंदर जवाल आता है ना, तो वो अपने नबियों को नाम लेकर मुखातिब करती हैं। बाप को तो नाम लेके नहीं पुकारते, लेकिन नबी के नाम के साथ आवाज़ें ऐसी लगाते हैं कि जिससे अदब के भी ये बात खिलाफ है। या मूसा, बनी इसराइल के साथ तो ये हुआ। अफसोस की बात है कि आज कुछ मुसलमान भी यही काम करने लगे। हालांकि सूरह हुजरात में अल्लाह ताला ने ये बात कह दी कि नबी को पुकारना ऐसा ना रखो जैसे तुम आपस में एक दूसरे को पुकारते हो। बहरहाल कौमों के मिजाज पे बेहतरीन रोशनी बढ़ती है इससे एक लफ्ज़ से। क्या कहा? लन नोमिना, हर किस हम ईमान नहीं लाएंगे। या फिर देखिए लन आया है, ये नहीं कहा कि ला नोमिना, क्योंकि ला में शिद्दत नहीं होती, नो, लेकिन लन नेवर। गोया के शिद्दत से कह रहे हम नहीं ईमान लाएंगे। किस पे? लका, तेरे ऊपर, तेरे साथ ईमान नहीं लाएंगे। कब तक? हत्ता, यहाँ तक के नरल्लाह जहरा, हम देख लें अल्लाह ताला को खुल्लम खुल्ला, आमने सामने देख लें। फ़अख़ज़त को मुसाइका, इनके इस गुस्ताखाना जुमले का नतीजा क्या निकला? कि तुमको बिजली ने पकड़ लिया। वन तुम तंजुरून, और तुम देख रहे थे। फिर उसके बाद क्या हुआ? तुम बअसनाकुम, तुम देख रहे से मुराद क्या है? कि बिजली जब गिरी तो मूसा अलैहिस्सलाम या कौम के जो ये लोग थे वो देख रहे थे कि कैसे उनके सामने लोग हलाक हुए। फिर क्या हुआ? तुम बअसनाकुम, फिर हमने तुमको उठाया, जिंदा किया, मरने के बाद दोबारा उठाने के लिए लफ्ज़ हम पीछे देख चुके। कब? मिम बादी मौतिकुम, तुम्हारी मौत के बाद। क्यों फिर उठाया? लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम शुक्र अदा करो। वही अंदाज, एक नई जिंदगी मिली कि अल्लाह की नाफरमानियों को छोड़कर फरमाबरदारियां इख्तियार करो। यहाँ तक ये दो बातें जो आईं, इसको हम देखेंगे। हम मूसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के उस दौर को पढ़ रहे हैं जो फिरौन के डूबने के बाद वादिय तीह में गुजारे हुए सालों से मुतल्लिक थी। जब बछड़े वाला मामला रफा दफा हुआ, इन्होंने तौबा की, इनको अफसोस हुआ कि हमने क्या किया, माफ़ी मांगी, कुछ कत्ल हुए, कुछ बच गए। अब इसके बाद क्या हुआ कि मूसा अलैहिस्सलाम ने इनको कहा कि देखो, मैं कोहे तूर पे था, अल्लाह ताला की तरफ से वही आई और तुम्हारे लिए ये किताब आ गई। कहने लगे हमें क्या पता, हमने कब देखी है। देखिए, जब बंदा जवाल का शिकार होता है ना, तो अपने लीडर या अपने रहनुमाओं से बदगुमान होने लगता है। लम्हा लम्हा इस कौम का मिजाज आपको दिख रहा है कि ये नबी से भी बदगुमान हो रहे हैं। तो आज भी जब लोग दीनी रहनुमाओं से बदगुमान हो जाते हैं या कर दिए जाते हैं, तो बाज़ दफ़ा फिर वो उससे दूर नहीं होते, दीन से दूर हो जाते हैं। कहने लगे कि हमें क्या पता कि आपको अल्लाह ने ये किताब दी है या आपके पास कोई फरिश्ता आया है, हम तो खुद अल्लाह ताला को देखना चाहते हैं। ऐसी बात हुई थी। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि देखो, अल्लाह की तरफ से वही आई है और ये बात है। कहा नहीं, ऐसा नहीं होता। हुआ क्या कि अच्छा, ऐसा करो कि इन में से जो अच्छे पढ़े लिखे आलिम टाइप के जो लोग, यानी इल्म जितना भी था, उनको साथ ले जाएं, टूर पे जहाँ आप बैठे हैं इनको भी ले जाएं, फिर वहाँ ये सुनेंगे तो इनको भी यकीन आ जाएगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने इतना गैर हकीकी मुतालबा भी मान लिया। कहा ठीक है। तो रिवायत में आता है कि 70 सरदार इनके मुंतखब किए गए, मुख्तलिफ कबीलों से सब गए, दोबारा मूसा टूर पे गए। वहाँ मूसा अलैहिस्सलाम पे अल्लाह ताला की तरफ से जब वही आती थी और आपको पता है कि मूसा कलीम उल्ला भी थे, कलाम किया था बराह रास्त इनसे अल्लाह ताला ने, यानी बाकी अम्बिया के पास तो फरिश्ते के ज़रिए बात होती थी, लेकिन बास मौके पे मूसा अलैहिस्सलाम से बराह रास्त खिताब है, इसीलिए या मूसा के लफ्ज़ आते हैं अल्लाह ताला की तरफ से भी। अब जब ये गए, इन्होंने वो आवाज़ भी सुन ली, जिस तरह से भी वही की कोई आवाज़ होती थी, लेकिन वो 70 चुने हुए सरदारों ने कहा कि भाई ये तो सिर्फ आवाज़ सुनी है, क्या पता पीछे कोई और ही बोल रहा हो, हम तो अब अल्लाह को देखेंगे। वही बात है कि खड़े होने को जगह दो तो पाँव पसारने लगे, बढ़ते ही जा रहे हैं, और गुस्ताखी का यही मिजाज होता है। आप एक छोटी सी किसी की सरकशी बर्दाश्त कर लेना तो वो दूसरी भी करेगा, इसलिए पहली पे पकड़ लें, ये ज़िंदगी का एक असूल है। इनकी ज़ुबान इतनी खुली कि कहने लगे, और ये कहने वाले कोई आम बनी इसराइली नहीं थे, उनके भी चुने हुए सरदार। अल्लाह ताला को इस बात पे इतनी गैरत आई कि जब इन्होंने ये कहा कि हम भी अल्लाह को देखेंगे, तो आसमान से बिजली आई और वो 70 सरदार मर गए। ये तूर पे हो रहा है, कौम साइड पे वादिय ती में, मूसा अलैहिस्सलाम अकेले खड़े हैं कि ये क्या हुआ अल्लाह ताला, ये सारे मर गए, ये लोग तो मुझे छोड़ेंगे ही नहीं, ये कहेंगे मूसा ने पहाड़ पे ले जाके सबको मार दिया। जब कौमें बदगुमान होती हैं तो इसी तरह की बातें होती हैं। फिर मूसा ने दुआ की कि अल्लाह ताला इनको मारना था तो वहां सबके सामने मारता, मेरे पास इधर मैं इनका क्या करूंगा, आप इनको जिंदा करें। मूसा अलैहि सलाम की दुआ से अल्लाह ताला ने उन सारे 70 लोगों को जिंदा कर दिया। इसका तذکرہ है कि फहाजत को मो सायका, बिजली पड़ी, और सायका वो बिजली जो भस्म कर देती है, जला देती है। वन तुम तंजरून, और तुम देख रहे थे, यानी तुम देखने से मुराद जहां मूसा की तरफ इशारा हो सकता है या बाकी लोगों की तरफ। फिर क्या हुआ, सुम्मा बस नाकुम, फिर हमने तुमको जिंदा किया, मिम बादी मौतिकुम, तुम्हारी मौत के बाद। यहाँ बास लव कहते हैं कि ये मौत असल मौत नहीं थी, क्योंकि वो ये नहीं तसव्वुर कर सकते ना कि कोई मरने के बाद जिंदा भी कर सकता है। तो देखिए, जब लफ्ज़ मौत आ गया तो हमें क्या करना है कि इसको तुम्हारी बेहोशी थी या कुछ था, कहते नहीं वो मरे नहीं थे, वो बस बेहोश हो गए थे। ऐसी तफसीरों से पनाह मांगनी चाहिए जिसमें असल लफ्ज़ों को छोड़कर तावीलात के पीछे जाया जाए, ये दुरुस्त नहीं होती। जो अल्लाह की ज़ात इतने करोड़ों अरबों इंसानों को हर रोज़ सोने के बाद जिंदा हालत में जगा देती है, तो क्या वो बाद में इंसान को मौत के बाद जिंदा नहीं करेगा? और इससे वो अकीदा भी खुल गया कि मरने के बाद इंसान जिंदा किए जाएंगे। फिर यहाँ ये जो बात है ना, लन नो मीना ला का, इसमें अगर आप थोड़ा सा गौर करेंगे ना, तो नो मीना के बाद लाम आ रहा है। अरबी जबान के एक असूल याद रखिएगा कि आमना या यू मीना के बाद जब बा का सिला हो, यानी अगर यहाँ ये लफ्ज होता ना नो मीना बिका, होना असूलन हमें लगता है ऐसे ही चाहिए था कि तेरे साथ ईमान नहीं लाते, तो जब नो मीना या आमना या यू मिन किसी भी लफ्ज के बाद बा का लफ्ज आता है, तो इसके मानी ईमान लाने के होते हैं। जबकि आमना के बाद जब लाम का मानी हो, जैसा कि यहाँ लन नो मीना लका, तो लाम जब अगले लफ्ज के साथ आता है, इसको सिला कहते हैं, यानी मिला हुआ लफ्ज, तो इसके मानी तस्दीक करने के होते हैं, क्योंकि ईमान तो हम अल्लाह ताला पे लाते हैं ना। तो यहाँ तस्दीक के मानों में है कि बनी इसराइल ने ये कहा कि मूसा हम आपकी बात की तस्दीक नहीं करेंगे कि जो आप बात कह रहे हैं ये सच है, लिहाजा हम तो देखना चाहते हैं किसको, अल्लाह को। यहाँ एक छोटी सी बात करते हुए फिर आगे चलते हैं कि इन्होंने भी क्या कहा कि हम अल्लाह को देखना चाहते हैं, नरअल्लाह जहरा, हाँ खुल्लम खुल्ला देखना चाहते हैं। ऐसा ही मुतालबा मूसा ने भी किया था, सूरत आराफ की आयत 143 में आप पढ़ेंगे, कहते थे कि रब्बी अरिनी, ए मेरे रब दिखा मुझको, क्या कि अनजुर इलाइक, मैं तुझे देखना चाहता हूँ। जब मूसा अलैहिस्सलाम की अल्लाह ताला के साथ बात होती थी, तो मोहब्बत में मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से ये कहा कि अल्लाह ताला मैं आपको देखना चाहता हूँ, तो इस बात पे अल्लाह ताला ने अपनी तजल्ली पहाड़ पे डाली, तो पहाड़ जला और उस मंजर को देखते हुए मूसा बेहोश होकर गिर गए। आगे आ रहा है तस्करा, तो मूसा अलैहिस्सलाम जब होश में आए तो फौरन तौबा की कि अल्लाह ताला आज के बाद मैं ऐसा मुतालबा नहीं करूंगा, और मैं इस बात पे ईमान लाने वालों में पहला हूँ कि तुझे कोई नहीं देख सकता। सवाल पैदा होता है कि मुतालबा तो मूसा ने भी किया था और मुतालबा इन्होंने भी किया, मूसा के मुतालबे पे अल्लाह ने पहाड़ पे तजल्ली डाली और मूसा को नहीं मारा, लेकिन इनके मुतालबे पे इनको मार दिया, फर्क है। देखिए अल्फाज भी बोलते हैं, हम जब किसी से बात करते हैं ना तो हमारी टोन बताती है कि हम किस अंदाज से बात करें। मूसा का अल्लाह को देखने का मुतालबा वो मुतालबा था जो हर ईमान वाले के दिल में ख्वाहिश की तौर पे होना चाहिए। तो फ़र्क है दोनों बातों का कि एक के कहने पे अल्लाह ने प्यार से मोहब्बत से एक मंजर दिखा दिया और दूसरों को मार दिया। और उसके बाद क्या हुआ कि जब उठे लोग तो क्यों उठे, लअल्लकुम तशकुरून, अब शुक्र करो। ये कैसा शुक्र था कि अब ये मुतालबा ना करना। यहाँ देखिए कि अल्लाह ताला कैसे कौमों को और इंसानों को मौके देता है कि वो अपने आप को बदल लें। फिर क्या हुआ कि वो ज़िंदा हो गए, फिर उन्होंने जाके गवाही दी कौम को कि भाई देखो नहीं वाकई मूसा के पास वही आती है। तो फिर एक और मरहला तय हुआ कि चलो इसके अंदर मूसा सच्चे हैं। ऐसे लगता है कि ये कौम हर थोड़े दिन के बाद नबी के बारे में बदगुमान हो जाती थी, फिर इनको शक होने लगता था, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, नहीं ये नहीं, ये मूसा की अपनी बातें हैं। हर दौर में देखिए नबियों के साथ यही हुआ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौम भी आपसे बदगुमान ही रही अंत तक, नहीं आप किसी अजमी से सीख आते हैं, नहीं आपको तो कोई फलां आके बता देता है, नहीं आप तो मजनू हो गए, आप तो शायर हैं, आप काहिन हैं। क्यों? देखिए शैतान का एक बहुत छुपा हुआ वार होता है कि जब वो पैगाम नहीं बदल सकता ना तो पैगाम लाने वाले को मशकूक कर देता है। हम कुरान की सदाकत का इनकार नहीं करते ना तो हम उसके बयान करने वाले में ऐब निकालने लगते हैं, नहीं ये वजह इसलिए नहीं, नहीं ये वजह इसलिए नहीं, और शोशे निकालते हैं। और बाज़ लोग उन शोशों को सुन के ही दूर रहते हैं, तो वो असल में महरूमी की बात होती है। अब यहाँ ये वाक्या पूरा हुआ, अब इसके बाद एक और वादिय ती ही का सीन हमारे सामने है। वज़ल्लल्ना अलैकुमुल ग़मामा व अनज़ल्ना अलैकुमुल मन्ना वस्सलवा, और साया किया हमने तुम पर अबर का, यानी बारिश का, बादल का। फिर क्या हुआ? वअन्ज़लना अलैकुमुल मन्ना वस्सलवा, और हमने तुम्हारे लिए मन और सलवा नाजिल किया। और साथ ही क्या कहा? कुलू मिन तैयिबाति मा रज़क़नाकुम, खाओ पाकीज़ा में से जो हमने तुमको रिस्क दी। और साथ ही कह दिया वमा ज़लमूना वलाकिन कानू अन्फुसहुम यज़लिमून, उन्होंने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा। इस लफ्ज़ को हाईलाइट करें, इसका लोग तर्जुमा बहुत गलत याद कर पाते हैं। ये लफ्ज़ आगे भी आएगा, देखिए आप इसको ब्रेकअप करके देखें ना, ज़लमू उन्होंने जुल्म किया ना हम पर। टेक्स्ट को अमूमन देखने से ना एक फौरी नज़र में जो तर्जुमा जहन में आता है ना वो क्या, हमने उन पे जुल्म नहीं किया, हालांकि वो क्या होता है, वो ज़लम ना, ग्रामर को अगर सामने रखेंगे तो ज़लम ना बनता है। और कई लोग रवानी में इसका तर्जुमा यही करवा जाते हैं कि हमने उन पे जुल्म नहीं किया, यानी मनोसलवा को रोक कर हमने इन पे जुल्म नहीं किया। हालांकि हकीकत क्या थी, अल्लाह ताला कह रहे हैं कि इन्होंने इनकार करके, नेमत की नाशुक्री करके हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा, अल्लाह का कुछ नहीं बिगड़ता। हाँ वला किन कानू अनफुसहुम यस्लिमून, और ये अपने ही नफ्सों पे जुल्म करने वाले थे। यहाँ से जो बात शुरू हो रही है ये अगले रकू के अंदर इसकी तफसील पूरी होगी। असल में यहाँ अब बनी इसराइल के 6 लाख के लश्कर की कहानी है। तकरीबन कहते हैं कि 6 लाख का काफला था जो मिस्र से इस जगह आया। अब आप सोचिए कि पीछे जा नहीं सकते, आगे मुल्क शाम में दुश्मन है, वहाँ जाना नहीं चाहते, लिहाजा हुआ क्या कि ये लोग फिर इसी वादी में रहे। ये एक मैदान था मिस्र और शाम के बीच में, तकरीबन 10 मील है, बड़ी जगह नहीं थी, 10 मील का एक टोटल एरिया था। ये लोग अपने वतन मिस्र जाने के लिए दिन भर सफ़र करते और रात को किसी मंजिल पर उतरते, सुबह को देखते तो जहाँ से चले थे वहीं आ जाते। ये तफसीर कुर्तुबी में लिखा हुआ है। यानी इतने फिरते घूमते, अब सहराओं में ना सड़कें होती हैं ना वहाँ कोई साइन बोर्ड्स होते हैं, इधर घूमते उधर घूमते और 40 साल उसी वादी में रहे। इसी वजह से उस वादी को वादी तीह कहते हैं। तीह का लफ्जी माना क्या होता है? सरगर्दां और परेशानी से घूमना। कुछ लोगों को शौक होता है ना ड्राइविंग का, सैर का, तो इस गली में जा उधर जा, कोई मंजिल नहीं, यानी डायरेक्शन लेस लोग जो होते हैं वो ऐसे ही होते हैं। डायरेक्शन तो इनके पास थी नहीं, अब खुला मैदान है, ना कोई इमारत है, ना दरख्त है, ना कोई कुछ। अल्लाह ताला ने देखिए कि ये नाफरमान कौम को वहां भी नेमते दी। जाहरी बात है कि अल्लाह ताला के बंदे थे, उन्होंने इंतज़ाम तो करना ही था, लेकिन अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ से इस मैदान में इनकी ज़रूरियात पूरी की। इन्होंने शिकायत की कि मूसा यहाँ तो हमें धूप बड़ी लगती है, तो अल्लाह ताला ने एक सफ़ेद किस्म का बादल इनके ऊपर कर दिया था। रिवायात में आता है कि ये बादल इनके ऊपर रहता, ये चलते तो बादल भी इनके ऊपर ऊपर चलता, जब रुकते तो बादल भी रुक जाता। और रात को जब अंधेरे का मामला हुआ तो अल्लाह ताला ने वही बादल जो था उसको रोशनी का एक मिनारा बना दिया। यानी अल्लाह के इंतजाम क्या मुश्किल है उसके लिए, वो सितारों में इतनी लाइट भर दे कि वहां आपको रोशनी का इंतजाम होने लगे। इसी तरह जब भूख लगी, भाई खाएं कहाँ से, तो ये कौम थी इस दौर में, सारी बनी इसराइल पे नहीं, सिर्फ इस टाइम पीरियड के अंदर इनके ऊपर आसमान से दो खाने उतरे थे, एक को मन कहते हैं और एक को सलवा कहते हैं। मन ऐसे था जैसे गूंद, स्वीट, रात को कोई ऐसी चीज बरसती थी जो गूंद की तरह जम जाती थी, आप लोगों की फेवरेट च्युइंगम, गम, हाँ मीठी चीज थी, लोग चबाते रहते ना च्युइंगम को, कुछ इसी किस्म की एक चीज थी। और सलवा क्या थे, परिंदे थे, सुबह होती तो आसमान से उड़ते उड़ते परिंदे आते इनके पास, बिल्कुल आके नीचे बैठ जाते, ये उठाते उसको जिबा करते काटते। हुक्म क्या था कि जितनी जरूरत है उतनी खा लो, जमा ना करो, क्योंकि जमा करने से फसाद पैदा होता है, बिगड़ती है चीज। अब हुआ क्या कि इन लोगों को अल्लाह ताला ने ये नेमतें दी, कपड़ों की बात हुई, ये सारी बातें तफसीर कुर्तुबी के नाते से मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि अनयूजल बातें हैं ना, तो इसके लिए दिल में आता है कि ये कहाँ से हम पढ़ें, ये अरबी की तफसीर है, आप भी पढ़ना चाह सकते हैं तो पढ़ें। तो उसमें वो कहते हैं कि आप जब कपड़े थे, अब धोएं कहाँ, बदले कहाँ, मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ से अल्लाह ताला ने इनके कपड़ों को ही ऐसा कर दिया कि ना फटते थे ना मैले होते थे। देखा जाए तो कपड़े आज के भी नहीं फटते, हाँ आपका दिल भर जाए तो और बात है, लेकिन फटते नहीं है कपड़े, 8 साल पुराना भी सूट आप पहन लें तो आपको ऐसे ही लगेगा कि नया है। इसी तरह कहते हैं कि वो इनके जिस्म के साथ बड़े होते थे, बच्चे बड़े होते तो साथ साथ कपड़े भी फटते। बहरहाल अल्लाह ताला ने इन लोगों से कहा कि देखो तुम्हें हमने ये दिया, ज़ल्लल अलैकुमुल ग़माम, क्लाउड्स को कहते हैं बादलों की सूरत में, तुम्हारे पास ये चीज़ मौजूद थी, मन तुम्हारे लिए उतार दिया, मीठी चीज़ थी और तुम उसको खा लेते, गोया कि ये कार्बोहाइड्रेट की उनकी डिमांड पूरी हो गई, सलवा प्रोटीन का एक सोर्स था, अल्लाह ताला ने इनके लिए इंतज़ाम किए थे और कहा कि तुम खाओ पियो, कुलू मिन तैयिबात, लफ्ज़ पे गौर कीजिएगा, खाओ, खाना मना नहीं, लफ्ज़ कुलू अमर है, डूज यानी डूज में से है, गोया कि खाना भी इबादत है, कोई आज ये कहे ना कि खाना पीना छोड़ना दीन है, ऐसा नहीं है, शर्तें हैं बस, खाओ पहली बात मिन तैयिबात, पाकीज़ा में से खाओ। और पीछे हम देख चुके हैं कि तैयब दो तरह का होता है, एक तैयब होता है बिज़ात, उसके इंग्रेडिएंट्स ख़राब ना हो, ये नहीं कि उसके अंदर कोई हराम मटेरियल है या उसका वो है ही कोई ऐसी अच्छी चीज़ नहीं, और दूसरा तैयब होता है सोर्स ऑफ इनकम के साथ हलाल हो, बस ये दो चीज़ें तो खाओ, कोई हरज की बात नहीं है, बासी ना खाओ, गला सड़ा ना खाओ। मा रज़क़नाकुम, जो हमने तुमको दिया, यानी अल्लाह ने दिया था, किसी और ने थोड़ी दिया था, तो अल्लाह के दिए से खाओ। इससे इस्लाम के अंदर भी और पिछले अधियान में भी खाने पीने से रुकने की जो बात है ना, उस पर बात है कि दीन नहीं है। देखिए कोई माँ ऐसी है जो खाना पकाए और बच्चे आए और शौहर आए और खाने लगे तो क्या खबरदार हाथ लगाया, तो सब लोग जो कुकिंग करते हैं उनको पता है कि उस वक्त कितनी तस्कीन हो रही होती है जब उनका पका हुआ खाना लोग खाएं, हाँ नेक खाएं, अच्छे लोग खाएं ताकि उनकी इबादत में आपको हिस्सा मिले, आपके शौहर अगर नमाज़ पढ़ते हैं या रोज़ा रखते हैं तो आपके हाथ का पका हुआ खाना भी आपका इबादत है, तो अल्लाह ने मना नहीं किया, लेकिन हद में रहते हुए खाओ, दूसरे का ना खाओ और बहुत ज़्यादा ना खाओ। अब कहा क्या था, जितना है अल्लाह रोज़ लाएगा और ख़त्म हो जाएगा, लेकिन इन्होंने हिर्स के मारे हुए लोगों ने क्या कर दिया कि जमा करना शुरू कर दिया। अब जब जमा किया तो वो गल सड़ जाता ना, उस वक्त फ्रीज़र थे, और मैं सोचती हूँ कि जिस शख्स ने डीप फ्रीज़र ईजाद किया था उस बेचारे ने तो ये सोच के ईजाद किया था ना कि कुछ बच जाएगा तो रख देंगे, हमने क्या किया, आपकी हंसी से ही बात समझ आ गई है, यानी आज फ्रीज़र बनाने वाला होता तो बहुत रोता हमारे फ्रीज़र देख के, पहले फ्रीज़ करते हैं फिर खाते हैं, हा? बच गया रख लिया, ज़ाया होने से बच गया, दोबारा अगले वक्त खा ले, और ताज़ा को बासी करके खाते हैं। बहरहाल कोई फतवा नहीं है ये, आप लोग परेशान ना हो, लेकिन इन्होंने क्या किया था कि उसको जमा करना शुरू किया, तो एक तो ये जुल्म था, एक जुल्म इनका अगले रुकू में आएगा कि लन नसविर आला तामिम वाहिद, हम एक ही खाना अब रोज़ नहीं खा सकते, वन डिश का इनकार कर दिया। अल्लाह ताला कहते हैं कि वमा ज़लमूना, हमारा क्या बिगड़ा, अल्लाह की नेमत थी, बग़ैर मेहनत के मिल रहा था, नेचुरल था, प्योर था, कोई उसमें इंग्रेडिएंट्स नहीं थे, कोई कोई उसके अंदर ऐसे मादे नहीं थे कि जिसे प्रिजर्व किया जाए, यानी प्रिजर्वेटिव्स नहीं थे, फ्रेश चीज़ें थी, खाते रहते, इबादत करते, अल्लाह ने इनको रिस्क और माश की और ज़मीन खोदने की मुश्किलात से आज़ाद किया था, लेकिन इंसानों को नेमतें रास नहीं आती, कुछ बड़े ही बदबخت लोग होते हैं, जब नेमत पास नहीं होती तो रोते हैं, और जब नेमत पास आती है तो कहते हैं कि नहीं अब इसका कुछ और तरीका कर लें, अब कुछ और कर लें, और नतीजा क्या हुआ कि अल्लाह ने मन सलवा को रोक दिया इनसे, कहा हमारा क्या गया। अल्लाह ताला का एक वादा है, सूरत इब्राहिम में आता है, वइस्तअذن रब्बुकुम लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, तुम्हारे रब ने ये पुकारा कि जब तुम शुक्र करोगे तो मैं नेमत को बढ़ा दूंगा, वलइन कफरतुम, और अगर तुमने ना शुक्री की ना फरमानी की, इन अज़ाबी लशदीद, मेरा अज़ाब बड़ा शदीद है। इसीलिए हम जिन चीज़ों की कदर नहीं करते ना, फिर वो हमसे छिन जाती हैं, चीज़ छिन जाती है या उसकी तलब छिन जाती है। तो अल्लाह ताला ने इनको बता दिया। अब क्या हुआ, इन्होंने कहा भाई हमें तो मनसलवा खाना नहीं, तो कहा ठीक है, वइज़ कुलना, हमने कहा चलो उदखुलू, दाखिल हो जाओ, हाज़िहिल क़रिया, इस बस्ती में। अब ये कौन सी बस्ती थी, इसके बारे में मुफस्सरीन की दो राय हैं। बास कहते हैं कि इनके इस मुतालबे पे कि हमें तो ज़मीन का खाना चाहिए, आसमान के खाते खाते थक गए हैं, तो अल्लाह ताला ने इनको किसी शहर में दाखिल होने का हुक्म दिया, क्योंकि जिस वादिय तीह में थे वो तो डेजर्ट था, ना वहाँ कुछ उगना था, ना वहाँ की ज़मीनें ज़रख़ेज़ थी, ना फर्टाइल थी, तो लिहाजा इन्हें कहा जाओ फिर किसी ऐसी बस्ती में, हाज़ हिल करिया, इस बस्ती में, फ़कुलू मिनहा, फिर खाओ वहाँ। बास कहते नहीं, इससे मुराद बैतुल मक़दस है, और अगर इसको बैतुल मक़दस कर लें तो दोनों ही बातें आ जाएंगी। क्यों, पहली बात है कि जाना तो इनको बैतुल मक़दस में ही था ना, मुल्क शाम में, जहाँ यरूशलम है, इनकी डेस्टिनेशन वही थी। 40 साल का अरसा गुजरा, वो जनरेशन जिसने जिहाद का इनकार किया था वो मर गए, बूढ़े थे, ख़त्म हुए, फिर यंगस्टर उठे, ये चूंकि गुलामी के अंदर पले हुए थे, गुलामी में थे ना, तो इनकी सोच समझ ही ख़त्म हो गई हुई थी, सिर्फ इनको मेहनत कर करके जहन ही ख़त्म हो चुके थे, इतना काम था कि पढ़ने पढ़ाने का इनको मौका ना मिला, वो सब ख़त्म हुए। फिर अगली इनकी नस्ल सहराओं में पली, ये है वो नुक्ता जो अक्सर मेरी जुबान से निकल जाता है तो कुछ माओं को बुरा लगता है, कि जो माएँ चाहती हैं ना कि हमारी नस्लें मुजाहिदाना सोच रखने वाली हों, हार्ड वर्किंग हो, तो उनको फिर ज़माने के थपेड़ों के अंदर लाना चाहिए। जब हम बच्चों के बहुत लाड देखते हैं, इतने प्यार से उनको पकड़ते हैं कि उनको सख्त हाथ की आदत ही नहीं रहती, और जब ज़िंदगी का मकसद ही सिर्फ ये हो जाए कि बस जो कहो हाजिर, बल्कि कहने की भी ज़रूरत नहीं, उससे पहले ही हाजिर, तो ख़राबी क्या होती है कि लोग काबिल नहीं रहते। इस नस्ल से, यहाँ से, सहराओं में से वो कौम उठी थी जिन्होंने यरूशलम को फ़तेह किया था। यूशे बिन नून के दौर में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का इंतकाल इन्हीं 40 सालों के दौरान हो गया, वो लीडर ख़त्म, उनकी जगह फिर अगले नबी यूशे बिन नून आए, कालिब यूहन्ना आए, फिर उसके कितने आए, यूशे बिन नून वो यंग लीडर थे जिन्होंने इनकी यूथ को जमा किया। अब ये रियलिस्टिक हो चुके थे, मिस्र उस वक़्त की एक सुपर पावर थी, आज के दौर में आपके वेस्टर्न कंट्री था, चले वहाँ ग़ुलाम थे, लेकिन बड़े लोगों के ग़ुलाम भी एसियों में ही रह रहे होते हैं, उनको भी आसाइशें होती हैं। उसके बरक्स जब ये नेचुरल माहौल में आए, फितरत से इनका इंटरेक्शन हुआ, तो फिर इनके अंदर जुरत पैदा हुई, फिर ये वहाँ गए मुल्क शाम, और इन्होंने कौमे मालका से जिहाद किया, और अल्लाह का वादा पूरा हो गया, थोड़ी सी बस कोशिश की, वो कौम हार गई और चल पड़े। और यकीन करें कि कौमों के साथ मुकाबला करने में और उस पर हमारा क्या मामला होगा, यही चीज़ है, हमारा सिर्फ काम ये होता है पहला कदम उठाना, ईमान हो, अंतुमुल आलौन इन कुंतुम मोमिनीन, सूरत आल इमरान में आता है, तुम ही बुलंद रहोगे अगर तुम ईमान वाले हो। जब कौमों के अंदर ऐसी बातें आती हैं, अल्लाह ताला ने कहा ठीक है जाओ शौक से चलो, उदखुलू हाज़िहिल क़रिया, फातेह बन कर गए या फिर खाने की तलाश में गए थे, तो मुल्क शाम की ज़मीन बड़ी ज़रख़ेज़ है। सूरत बनी इसराइल की पहली आयत में ही आप पढ़ेंगे कि बारकना, हमने उसके अंदर बरकतें दी, बहुत सरसब्ज जगह, फ़कुलू मिनहा, खाओ इसमें से, है सुशी तुम, जहाँ से तुम जाओ, कितना रागादन, खुला खाओ, कोई मना नहीं, हाँ वदखुलुल बाब सुज्जदा, दाखिल होना इस दरवाजे में। ये कौन सा दरवाज़ा था, ये ख़ास तौर पे फतह के बाद जब बैतुल मक़दस में दाखिल हो रहे थे उसकी तरफ इशारा है, कौम फातह बन के जा रही है, का अकड़ने की बजाय, हाय हुर्रा के नारे लगाने की बजाय आजजी के साथ जाओ, क्योंकि फतह अल्लाह की तरफ से आती है, इन्ना फतहना लकम फतहम मुबीना। फतह जब होती है तो वो कौमों का अपना कोई कमाल नहीं होता, इसीलिए जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का फतह कर रहे थे तो उस वक्त आपका सर इतना झुका हुआ था कि आपकी दाढ़ी मुबारक आपकी ऊँटनी के कजावे के साथ थी। कौमें अपनी फतह के जश्न नहीं मनाती और उस जश्न में वो काम नहीं करती कि जिससे अल्लाह को नाराज़ करें। हम भी एक जश्न मनाते हैं हर साल एक ख़ास तारीख को, हम भी मेले ठेले करते हैं और उसमें शायद सारे वो काम हो जाते हैं कि जो किसी जगह को गुनाहों से पाक करने के लिए तो नहीं हो सकते। तो बहरहाल अल्लाह ने सबक सिख दिया कि अल्लाह को इज्जत देखो, बड़ा ही तो झुक जाओ। दरख्त जितना फल वाला होता है उतना झुकता है, सिराही जब तक झुकती नहीं है पैमाना नहीं भरता। नतीजा क्या निकला कि ये सदमे में गए। और हो क्या वकूल हैतुन, और कहो हैतुन, हैत का लफ्ज हम देख चुके, राहत में झाड़ दे अल्लाह हमारे गुनाह झाड़ दे, हमारी लोशें माफ कर दे। और खासतौर पर पिछले वाले से मिलाए राजे के, जब ने और सलवा का इनकार करके गुनाह किया था उसको झाड़ दे। सिंपल सा था कि इनको कहा हैतुन, कहो नग़फिर लकुम खताया, हम तुम्हारी खताएं माफ कर दे। कोई बात नहीं, तुम इंसान हो, इंसानों से हो जाते खताएं। नज़ीदुल मुहसिनीन, अब अगर अच्छे काम करोगे, एहसान करोगे, अच्छे तरीके से रहोगे तो हम और देंगे। यानी अपने गुनाहों की माफी लो, जहाँ पे गलती की वहीं से एक टर्न लो और पचो, हम तुम्हें माफ कर देंगे। अच्छा, सिंपल सी बात थी, ये क्या किया और उस करने इस कौम का मिजाज भी समझ में आएगा। और वो क्या कि फबद्दल्लज़ीना ज़लम, बस बदल दी उन लोगों ने जिन्होंने जुल्म किया। क्या कौल, कौल कौल के नीचे एक छोटा सैरो डाल लिखें, क्या कौल, कुल हत्तातुन। अल्लाह ताला ने इनको कहा था लफ्ज बोलो हत्तातुन, ये ऐसे ही आज हमारी जुबान में इस्तग़फ़िरुल्लाह, अल्लाह हमें माफ कर दे। हम कहते हैं ना अल्लाह हमारे गुनाहों को ढांप दे, तो इनको ये खाया गया था कि हत्तातुन, क्या हमारे गुनाह झाड़ दे, गिरा दे हमारे गुनाह में, पाक कर दे। इन्होंने क्या किया, बात को बदल दिया, कीला लहुम जो उनसे कही गई थी कहा गया, तो फसी आता है कि इन्होंने लफ्ज हत्तातुन को हिंता कहना शुरू कर दिया। हिंता कहते हैं नाच को, गले को। बास कहते हैं कि हब्बतुम फी शईरी, शईरा कहना शुरू कर दिया कि गला दो के दरमियान, जहन में वो भरा हुआ था ना कि जमीन से खेती बाड़ी करके ले, यानी लफ्जों को बदल दिया। और जिस कौम की किस्मत के अंदर अल्लाह के अज़ाब होते हैं ना, वो फिर मजाक के तौर पर, तमस्खर के तौर पर अल्लाह ताला के अहकाम जो होते हैं उनको बदलना शुरू करते हैं। इस कौम का आज भी यही मिजाज है, लफ्जों को बदलना, पेरोडी। आप देखें कोई चीज जो सीधी पेश की जाए, एडवर्टाइज देखें तो नाचते उठते, चीज को देखें तो घूमती फिरती। नहीं, अल्लाह के नबी महफिलों में इन्होंने लफ्ज बोल दिए। आगे आप पढ़ेंगे ला तकूलू राइना, राना कहा कहने का हुक्म था, इन्होंने राइना कहना शुरू कर दी। ओ हमारे चरवाहे शेफर्ड, तो इन्होंने मजाक किया, नॉनसेंस बिहेवियर की अलामत है। जब कौमें अल्लाह की किताबों से हिदायत लेने की जाए उसके लफ्जों को तोड़ मोड़ के अपनी मर्जी से बदलना शुरू कर दें, तो अल्लाह ताला कहते हैं कि ऐसे लोगों का अंजाम क्या है, इज्जम मिनस माई, आसमान से फिर इन पे कज़रा। क्यों, बीमा कान सुकून, इसकी वजह क्या थी कि फिस्क करते थे, नाफरमानी करते थे, हदों से आगे गुजर जाते थे। इन्होंने जिहाद का इनकार किया, इनको 40 साल रखना पड़ा। इन्होंने मन सलवा की नेमत का इनकार किया, इनको जमीन से खेती बाड़ी करके अपने लिए फसलें उगानी पड़ी, निकालनी पड़ी। इसीलिए ये लोग जो थे अल्लाह के अजाबों का शिकार हुए। और इन्होंने लफ्ज हित्ता जो इतना खूबसूरत लफ्ज था उसको खिंता कह दिया। अल्लाह ने कहा आजजी से चलो, सजदा करते हुए चलो। इन्होंने क्या किया, बैठे और जैसे बच्चा अपने सीरी यानी हिप्स के बल रींगता है ना, उस तरह रींगना शुरू कर दिया। क्या है ये मजाक, वी डोंट केयर, हु केयर्स, कोई नहीं मानता, हम नहीं इस बात को मानते। इस पे इन पे अजाब आया। तो यहाँ पे आप देखिए कि रुकू चूंकि पूरा हो गया, हालांकि अगले रुकू में भी इसी टाइम पीरियड की बातें हैं जो इंशाल्लाह हम अगले रुकू के साथ डिटेल से देखेंगे, लेकिन यहाँ एक छोटी सी बात जो साइड पॉइंट पे तो नहीं यानी बहुत डायरेक्ट पॉइंट है, वो क्या कि क्या कलाम में तब्दीली की जा सकती है। अल्लाह का कलाम था हित्ता, इन्होंने खिंता किया। आज मुसलमानों को क्या हुक्म है, शरीयत के अंदर क्या कुरान की आयत को बदला जा सकता है, नहीं बदला जा सकता। क्या उसमें कमी या बेशी की जा सकती है, नहीं की जा सकती। मसलन कुरान पाक की एक दुआ है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनत व फिल आखिरती हसनत व क़िना अज़ाबन्नार, ये कुरान की आयत है, इंशाअल्लाह ताला सूरत बकरा ही में हम पढ़ेंगे। बाज़ लोग क्या कहते हैं दुआ मांगते हुए, ये दुआ मांगने के बाद रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतों व फिल आखिरती हसनतों वक़िना अज़ाबल नार वक़िना अज़ाबल क़ब्र वक़िना अज़ाबल हज वक़िना अज़ाबल मीज़ान, और बाज़ इससे भी आगे बढ़ाते हैं, ये है आयत को बदलना। आप अपने लफ्ज़ों में कोई भी मांगे, जब कोई बात कुरान के अंदर आ जाए, कुरान की आयत को आप नहीं बदल सकते, आप उसमें इजाफा नहीं कर सकते, कमी बेशी नहीं कर सकते। दूसरी बात है हदीस की, कहीं आप हदीस कोट करते हैं तो क्या आप लफ्ज़ बदल सकते हैं, नहीं बदल सकते। हाँ, आपको लफ्ज़ नहीं याद और अरबी हमारी जुबान नहीं है, तो आप ये कह सकते हैं कि इसका मफहूम ये है, खुलासा ये है, अपने लफ्ज़ों में बयान करें। क्योंकि एक मौके पे हज़रत बरा बिन आज़िब को अल्लाह के नबी सल्लम ने एक दुआ सिखाई कि रात को जब बिस्तर पे जाने लगें तो वो दुआ पढ़ लो, जिसमें कुछ लफ्ज़ इस तरह से थे कि आमन तो बी किताबी कल्लज़ी अनज़लता व बी नबी ही कल्लज़ी अरसलता, कि मैं उस किताब पर ईमान लाया जो आपने नाजिल की और उस नबी पर जिसको आपने भेजा। जब आपने ये दुआ याद करा दी तो फिर आपने उनको कहा अच्छा मुझे सुनाओ, तो उन्होंने सुनाने में बस ये कह दिया कि आमन तो बी किताबी कल्लज़ी अनज़लता व बी रसूली कल्लज़ी अरसलता, और रसूल का लफ्ज़ अरसलता के साथ मैच भी हो रहा है, फ़र्क भी नहीं, अल्लाह के नबी रसूल भी थे और नबी भी थे। इसका फ़र्क आगे हम जाके देखेंगे। तो अल्लाह के नबी ने उनको कहा कि नहीं, तुम रसूल की जगह नबी कहो, तो लिहाजा बहुत ज़रूरत है। और अल्लाह के नबी की खुशखबरी भी है कि नज़रुल्लाहुल्मरा, अल्लाह उस शख्स को हरा भरा रखे, तरोताज़ा रखे, सरसब्ज़ो शादाब रखे, समीय मकालती, जिसने मेरा कोई कलाम सुना, फबल्लगहा, फिर उसको आगे पहुंचा दिया, कमा समिअहा, जैसे सुना। मैं सोचती हूँ अगर सिर्फ इसी एक बात पे अमल कर लिया जाए तो आज दीन में इजाफों के नाम पे जो पूरे पूरे ग्रुप्स बन चुके हैं ना, वो ढह जाएं। कुछ ग्रुप्स यानी आप उनको फ़िरके कह लें, मसलक कह लें, उनकी तो सारी बुनियादी इजाफों पे है, अल्लाह माफ़ करे। सहाबे कराम कहा करते थे कि लौल अलसनाद, अगर सनद ना होती, सनद कहते हैं उस हिस्से को कि हम तक ये बात अल्लाह के नबी तक कैसे पहुंची। यानी मिसाल है, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह से कोई हदीस है तो नबी सल्लम के और इमाम बुखारी के बीच में जो साथी हैं वो कितने थे, और इसी की बुनियाद पे हदीसों को बांटा जाता है। तो कहते हैं कि ये सनद काट दी जाए ना तो हर बंदा जो चाहे वो दीन बन जाएगा। काल वकीला, मैंने कहा, आपने कहा, उसने कहा, उसने कहा। आज आप किताबें उठा के देखें दुआओं की, जो मर्जी वजीफे भरे हुए हैं, क्या है? बुजुर्गों ने कहा, उन्होंने कहा, किसने कहा। ठीक है, आप करिए, आपके पास इसकी दलील होगी, लेकिन जहां तक अल्लाह के नबी की और उनकी नहीं, आप उसको अपनी बात कह के कर लें, ठीक है, शिर्क नहीं है तो आप करते रहें, लेकिन जिस चीज़ को आप दीन कहते हैं वो फिर अल्लाह और उसके रसूल को आना चाहिए। इसी तरह तीसरी चीज़ जिसमें इजाफा हम नहीं कर सकते वो अजान है। अजान के लफ्ज़ों के अंदर अगर कोई थोड़ी सी भी तब्दीली इधर उधर की कर देगा तो ये इस्लामी रिचुअल है, ये बिगड़ेगा। आगे जाके एक आयत आएगी सूरत निसा में, तो उस पर इंशाल्लाह तफसील से बात करेंगे। तो सारी बात का खुलासा ये है कि बचाओ इसी में है कि अल्लाह के दीन को वैसे ही ले लें जैसा है। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जत अम्मा यसिफून, वसलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। यहाँ पे तिलावत सुनते हैं।
وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرًا فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ